दंडोत्पंदन अनकबार सर्वकला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी बेसुमार अथाह अगनत अतोलै ज्यों बुलावहो त्यों नानक दास बोलै। दसों पातशाहियों के ज्योत स्वरूप शब्द गुरु चवर तखत के मालिक साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी महाराज के चरणों में उपस्थित गुरु की साजी निवाजी सात संगत जी गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। अभी अभी आदरणीय लखविंदर सिंह जी पासों बहुत ही सुंदर इलाही वाणी का कीर्तन सुन रहे थे। कीर्तन मनुष्य को गुरु के चरणों के साथ जोड़ता है। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, जब कोई सिख गुरु के चरणों में बैठकर गुरु का सिफत सलाह गुरु की महिमा गुरु का जश गाता है तो धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होता है और शुद्ध अंतःकरण में ही ज्ञान टिकता है। भांडा धोए बैस धूप देव तो दूध है को जाओ, सबसे उत्तम हर की कथा। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जो भल मथुरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जन परतख हर। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज साक्षात हरि हैं, परमात्मा हैं और उनकी पवित्र वाणी बावन अखरी की कथा आप लोग लड़ीवार सुन रहे हैं। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज आज हम लोगों को उपदेश कर रहे हैं अत सुंदर श्लोक, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत मृतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवंत। अत सुंदर कुलीन चतुर, इस संसार में शरीर करके व्यक्ति कितना ही सुंदर क्यों ना हो, बुद्धि करके कितना ही चतुर क्यों ना हो, शरीर करके सुंदर और बुद्धि करके चतुर चालाक कितना ही क्यों ना हो और मुख करके ज्ञानी भावे बहुत हो, गुरु महाराज हमें ये उपदेश कर रहे हैं कि यदि उसकी प्रीति वाहिगुरु के चरणों के साथ नहीं है तो ये समझो कि ये दो कौड़ी का भी नहीं है, उसको मरा ही समझो। क्योंकि श्लोक सहस कृति में साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उपदेश किए हैं मरणंग विसरणंग गोविंद है जीवनंग हरनाम ध्यावन है। वह आदमी मरा समझो जो वाहिगुरु का सुमरण नहीं करता, नाम नहीं लेता, चेते नहीं रखता। आखा जीवा विसरे मर जाओ, उस वाहेगुरु का स्मरण करना समझ जाओ मनुष्य की जिंदगी है, विसर जाना ही मौत है। सात संगत जी साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत। इस संसार में कुलीन का भाव यह है कि अच्छे कुल वाले भी क्यों ना हो, उसके बाप दादा परदादा बड़े अच्छे कुल वाले हों, शरीर करके सुंदर हो। शरीर की सुंदरता तो ऐसी है कि नाठ यड़े दिन चार, पवन करे पतज्यों ढल ढुल जुम्मनहार, रंग मान ले प्यारिया। जिस प्रकार से पत्ते के ऊपर ओश है, इसी प्रकार से जवानी है, शरीर की खूबसूरती है। ऊपरों चिटे पोचे नाल पोचिया मुनारा सोना, अंदर लहू पाक मल मूत्र भर गंदा है। के बंदा करे बंदगी ता बंदा चंगा, नहीं तो बंदा गंदे से भी गंदा है। और साथ संग जी गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं, तीरथ व्रत अरदान कर मन में धरई घुमान, नानक निःफल जातते हैं ज्यों कुंचर स्नान। तीरथ व्रत अरदान कर, मनुष्य तीर्थों में जाए, श्री अमृतसर साहेब जी का दर्शन तीर्थ है। तीर्थ उसे कहते हैं जहाँ पर अधिक से अधिक सुमरण हो, कीर्तन हो, भजन हो, ध्यान हो, उस वह जगह तीर्थ बन जाता है। जैसे श्री अमृतसर साहेब तीर्थ हैं क्योंकि वहाँ पर लगभग 20 घंटे कीर्तन होता है। श्री तरन तारण साहेब तीर्थ हैं क्योंकि हमारे गुरुओं के पावन पवित्र चरण के धूल वहाँ पड़े हैं, और जब भी अमृतसर जाने का मौका मिले तो कार से या ट्रेन से उस धरती पर पांव रखने से पहले हाथ से उस धरती के जो धूल है उसको मस्तक में लगाओ। फिर हमारे एक संत थे, वो ऐसा ही करते थे क्योंकि वो पावन पवित्र धरती है। सात संगत जी अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवंत। प्रभु से प्रीति याद रखना, जिसकी प्रीति परमात्मा से हो जाए उसकी प्रीति संसार से नहीं होती। मन के अंदर एक ही चीज रह सकता है, या तो प्रभु प्रेम या अहंकार। लेकिन आज व्यक्ति के अंदर परमात्मा की प्रीति के अलावे और कितने चीजें हैं जो मनुष्य को पीछे पीछे ले जाता है। अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जेह प्रीत नहीं भगवंत। परमात्मा से प्रीति, वाहेगुरु के चरणों में प्रीति, गुरु के साथ प्रीति। जब साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज उदासी धार करके आए, लोगों को परमात्मा से जोड़ के आए, जब घर पहुंचे तो थके हुए थे, लेट गए, नींद आ गई। माता जी कहती हैं तुलसा को कि जाओ गुरु नानक देव जी को उठा दो, उनको गरम गरम फुलका छकाना है। तुलसा दासी थी लेकिन उसके अंदर नम्रता, उसके अंदर प्रभु के चरणों में प्रीति, और उसका कुछ पुण्य उदय हुआ था क्योंकि पूर्व जन्म अंकुर जब प्रगटे भेटियो पूरक रसक बैरागी। जब तक पूर्व जन्म का पुण्य उदय ना हो जाए तब तक किसी महापुरुष संत के चरणों में बैठने की उसको मौका ही नहीं मिलता। सात संगत जी जब तुलसा उठाने के लिए गई कमरे में तो देखती क्या है कि गुरु नानक देव जी महाराज बहुत नींद से सोए हुए, नींद में। माता जी को आके कहती है, माता जी वो नींद में है। कहते नहीं नहीं उनको उठा के लाओ, फिर फुलका ठंडा हो जाएगा। तुलसा जाती है चरणों के तरफ। चरणों का सौंदर्य देखती क्या है कि गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों से एक प्रकाश निकल रहा है। वो मोहित हो गई चरणों और बैठ करके गुरु महाराज के चरणों की जो धूल है वो धूल को चाटने लग पड़ी। और जैसे ही धूल को चाटती है उसको तीनों लोकों का ज्ञान हो गया। तीनों लोकों का ज्ञान हो गया तो देखती क्या है कि साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का एक सिख है भाई मनसुख, उसका जहाज डूबा जा रहा है और वो जोदड़ी कर रहा है, मिन्नत कर रहा है, सच्चे पातशाह आप कृपा करके हमारे जो माल से भरा हुआ जहाज है सागर में डूब रहा है, आप कृपा करना। गुरु नानक देव जी महाराज भाई मनसुख के जहाज को बचा रहे हैं। तुलसा आती है माता जी के पास, माता जी अभी गुरु नानक देव जी बिजी हैं थोड़ा, भाई मनसुख के जहाज डूब रहा है उसको वो बचा रहे हैं। वहां पर माता जी कहती हैं, तू पागल हो गई है, गुरु नानक देव जी यहाँ सोए हुए हैं और तू कहते हैं कि डूबते हुए जहाज को बचा रहे हैं, तुमको दो बार भेजा लेकिन तू आंखें नहीं लग दी। माता जी आई कमरे में और आ करके उठा देती है। गुरु नानक देव जी को माता जी कहती हैं, ये तुलसा भी पागल हो गई है। एक कहती है गुरु नानक देव जी जो है डूबते हुए जहाज को बचा रहे हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हाँ माता जी ये तुलसा संसार वालों झल्ली हो गई है। सास संगत जी वह व्यक्ति धन्य है, वह व्यक्ति पूजने योग्य है जो संसार वालों झल्ला है या झल्ली है, जो संसार में बहुत चतुर है, सियाना है, घमंडी है, परमात्मा के मार्ग में वो एक कदम नहीं जा पाता है, जोर ना जुगते छोटे संसार। उसका कारण क्या है कि तीर्थ व्रत अरदान कर मन में धरे गुमान, नानक निफल जातते हैं ज्यो कुंचर स्नान। दान भी किया, तीर्थ स्नान भी किया, पाठ भी किया, सब कुछ किया, लेकिन जो अहंकार है कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने दान दिया, मैंने करता तो नहीं होता, ये जो मैं है ये मनुष्य को नाश करता है। हर जी अहंकार ना भावे, भोले भाई मिले रघुराया, परमात्मा को तो बिदर जैसा भोला आदमी चाहिए, दुर्योधन जैसा अहंकारी परमात्मा को प्रिय नहीं है। सात संग जी भाई गुरदास जी लिखते हैं बिदर के बारे में, क्योंकि जो बिदर था और उसकी पत्नी दोनों सुबह से शाम तक भगवान के साथ उसकी प्रीति थी, प्रेम करता था और भजन सुमरन लोगों का भला करना, उसका जीवन बहुत पवित्र था वेदर का, और हमेशा उसका मन जो है भगवान कृष्ण के चरणों में लगा रहता था। एक दिन दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को इनवाइट किए कि भगवान आए, हम आपके लिए 36 प्रकार के भोजन तैयार किए। 36 प्रकार का भोजन दुर्योधन ने तैयार किया, लेकिन भगवान उसके राजमहल में नहीं गए, वो विदर के घर चले गए। गुरबानी में आप लोगों ने पढ़ा भी है, ऐसो भाव विदर को देखियो, ओह गरीब मोहे भावे। राजन कौन तुम्हारे आवे, राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव विदर को देखियो, ओह गरीब मोहे भावे। खीर समान साग मैं पाया, गुन गावत रहन बिहानी। जो तुम्हारा खीर था ना, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले हुए, उससे ज्यादा स्वाद जो है हमने बिदर के साग में पाया और केले के छिलके में पाया। और सारी रात जो है प्रभु का जस सत्संग होता रहा। भाई गुरदास जी कहते हैं, आया सुनिया बिदर दे, बोले दुर्योधन होए रुखा, घर असाड़े छड़ के, गोले दे घर जाए के सुखा, भीखन द्रोणा करण तज, सभा सिंगार वडे मानुखा, झुग्गी जाए वलायुन, सवना दे जी अंदर धुखा। हम बोले भगवान जी सुनो, हस बोले भगवान जी सुनो, राजा होए सन्मुखा, तेरे भाव न दिसई मेरे नाही अपदा दुखा, भाव जीवेहा बिदर दे, होरी दे चित चाओ न चुखा, गोविंद भाव भगत दा भुखा। भाव के भावना विहीन नर पावे कैसे जगदीश को, भाव। और जिसके हृदय में भाव है उसके हृदय में कोई शिकायत नहीं। क्या शिकायत, हे प्रभु हमको जैसे रखदा है हमें मंजूर है, यदि मेरा कोई शिकायत करता है, हो सकता है हमारे अंदर कुछ ऐसे पाप हैं उसको धोना चाहते हो इसलिए निंदा करवाते। कबीर जी तो साफ कहे, निंदो निंदो लोक मुझको लोक निंदो, निंदी जाओ, क्योंकि हमें साबुन भी नहीं लगाना पड़ता और आपे धो लोग आकर के धो जाते हैं कपड़े, कोई डॉलर भी नहीं लगाना पड़ता, कोई मशीन की भी जरूरत नहीं, निंदक लोग हमारे कपड़े धो जाते हैं, उसको थैंक्स करो। अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवंत। प्रीति जीवन में सबसे बड़ी चीज है, प्रभु के चरणों में प्रीति। आज तक जिसने भी प्रभु को पाया है वो साच कहो सुन ले हो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाया। प्रीति से ही प्रभु को पाया है। मीरा के बारे में ऐसा कहते हैं कि मीरा जब भक्त रविदास जी के चरणों में बैठती थी, सत्संग करती थी, भक्त रविदास जी को गुरु बनाई उसने, और उनके चरणों में बैठकर उनका मुट्ठी चापी करती है, सत्संग सुनती है, सेवा करती है, उस वक्त के सारे लोग जो है उसको बहुत तरह के कुछ बोलते हैं। कोई कहता है मीरा बदचलन है, कैरेक्टरलेस है, ये है वो है। आज भी भक्त रविदास जैसे कोई भक्त रविदास खुद ही आ जाए और कहीं पर बैठ के जूता सीने लगे और मीरा अभी भी आ जाए, इतना एडवांस कंट्री कहलाते हैं, और सिख भाई चाहे हिंदू भाई चाहे मुसलमान भाई चाहे अंग्रेज भाई जो भी, कोई मीरा जैसी भक्तनी उनके चरण को दबाए, कपड़े को धोए और बैठ के चरणों में सत्संग सुने, तो एक बार तो जरूर कहे कैरेक्टर इसका खराब हो गया। भावे अपने को लोग, कोई कोई जो प्रभु का प्यारा है वो कहेगा कि धन्य है मीरा जो इनके चरणों में बैठ के प्रभु की गीत सुनती है, प्रभु की महिमा सुनती है, वरना 90% लोग तो है और ही कुछ बोले। तो उस वक्त की बात जब के लोग बहुत नैरो माइंडेड थे, मीरा को इतना सजा दिया उसके कमरे में सांप छोड़ दिया, कहते सांप ने उसके चरणों में आकर के नमस्कार करके लौट गया, उसको जहर दिया पीने के लिए, लेकिन उसने भगवान का नाम लेके जहर पी गई, वो जहर भी अमृत हो गया। इतना ही नहीं, उसके दोनों हाथ को बांध दिया गया और ऊंट के ऊपर बैठ करके रेगिस्तान की जो कटीली झाड़ियां हैं ऊंट को दौड़ा दिया, उसका सारा शरीर लहूलुहान है। सास संगत जी फिर भी कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, हमारे गुरुओं के जीवन को देखो क्या कुछ नहीं हुआ। साहेब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जो दया के सागर हैं, कहते हैं सिर्फ 5 साल के थे वो, तो कोई शादी में या पार्टी में जा रहे थे माताजी, इनको बहुत ही सुंदर पोशाक कीमती पहनाया। गुरु तेग बहादुर जी देखते क्या हैं, एक लड़का जिसके तन पर कोई कपड़ा नहीं, ठंड का मौसम है, कांप रहा है। गुरु महाराज उस वक्त 5 वर्ष की आयु में भी कितनी समझ, क्योंकि वो तो परमात्मा थे ना, निरंकार आप थे, अपना ये कीमती पोशाक निकाल करके उसको पहना दिया। वो लड़का कह रहा है नहीं नहीं माता जी ने आपको पहनाई, आप क्या पहनो। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं मित्र देखो, चढ़ते सूरज को तो सारे सलाम करते हैं, गिरते सूरज को जो थाम लेता है वो कोई कोई। कहते हैं मित्र हमारी माँ तो और भी खरीद के दे देंगे, तुम्हारे माता पिता गरीब हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं कि तुम्हें पोशाक दे सकें, और यह पोशाक देकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। दे करके प्रसन्नता, दूसरे को सुख दे के प्रसन्नता। और साकत पुरुष क्या है, साकत पुरुष दूसरे को दुख दे करके खुश होता, इतना ही फर्क है। भक्त और साकत में इतना अंतर है, भक्त अपना प्राण देकर के भी दूसरे को सुख देना चाहता है। कहते हैं दधीची एक ऋषि हुआ है, दधीची जंगल में तपस्या कर रहे हैं और वित्रासुर को ये वरदान था कि तुम कोई ब्रह्म ज्ञानी संत के हड्डी से यदि धनुष बाण बनाया जाए तो उससे तुम्हारी मौत होगी, वरना तेरी मौत नहीं होगी। और वित्रासुर ने बहुत उत्पात मचाया था, बहुत ज्यादा देवताओं का खून चूसता था और उसको पीता था, हाहाकार मच गया। सास संगत जी सारे लोग जो हैं दधीची ऋषि के पास गए और अपना दुख सुनाए, दधीची इतना प्रसन्न हुआ। दधीची ऋषि कहता है आज मैंने सुना था कि ये जो मनुष्य का शरीर है वो कोई काम में नहीं आता। पशु के शरीर तो काम आ जाते हैं, दांत काम में आ जाता है, उसके चमड़े काम में आ जाते हैं, नाखून काम में आ जाते हैं, लेकिन मनुष्य का शरीर 2 कौड़ी का नहीं होता। इसको जला के बेचने जाओ तो कोई 5 रुपये नहीं देता। लेकिन दधीचि ऋषि कहता, आज मैं धन्य हुआ हूँ कि ये नाशवान शरीर, दुर्गंध से भरा शरीर आज किसी के काम आ रहा है। सात संगत दधीचि ने समाधि में बैठा और अपने हाथों से अपनी पसली की हड्डी निकाल करके देवताओं को दे जाओ, और उसने धनुष बाण बनाया, उससे राक्षस मारे। भक्त संत जो प्रभु का प्यारा है उसके अंदर दया भरा होता है, और जिसके अंदर दया ही नहीं है वो मनुष्य क्या, वो तो सूखा पेड़ है। दया धर्म का मूल है। यहां पर साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवंत, प्रीत नहीं भगवंत। साध संगत जी, प्रभु की प्रीति के बारे में आपको, एक राजा हुआ है राजा सिवी। राजा सिवी बहुत धर्मात्मा राजा हुआ है। सारी रात उठ करके प्रजा के घर घर गलियों गलियों में जाता था कि किसी के घर से रोने की आवाज तो नहीं आ रही, और यदि किसी के घर से रोने की आवाज आती थी तो सुबह उसके परिवार को बुलाया जाता था कि तुम्हें क्या तकलीफ है, और उसकी जरूरतों को पूरा किया जाता था। आज नहीं, आज तो है कि जितना लूटना है लूट लो, क्योंकि इलेक्शन में जो है लोगों को शराब भी पिलाना है, मीट भी खिलाना है, दंगे भी करवाना है, गोलियां भी चलवाना है। आज तो जो सबसे गिरा हुआ आदमी होता है ना वो पॉलिटिक्स में जाता है, जो चोर हो, लंपट हो, बदमाश हो, वो पॉलिटिक्स में उस भाग लेता है। राजा सिवी एक दिन जंगल में जा रहा था, एक हंस घायल होकर के किसी बहेलिए ने उसको तीर से मारा और घायल होकर के उसके चरणों में गिर पड़ा पास में। राजा ने तुरंत उसको पानी लाया और हंस को पिलाया और उसको अपने राजमहल में रथ के ऊपर बैठा के ले जाने लगा। इतने देर में वो आ गया बहेलिया, वो कहता है कि ये पंछी हमारा है, हमारा परिवार 7 दिन से भूखा है। राजन, राजा का काम होता है न्याय करना, तुम न्याय करो, मैं प्रजा हूं तुम्हारा, यदि ये हंस नहीं दोगे हमारे परिवार नहीं खाएंगे, हमारे परिवार की मृत्यु होगी। राजा कहता है कि ये मेरे शरण में आया है, और राजा का धर्म है जो शरण में आ जाए उसकी रक्षा करे, उसके लिए प्राण भी दे दे। ऐसा करो बहेलिया कि तुमको तो मांस चाहिए ना, एक तराजू लाता हूं और इसके तौल के बराबर तुमको मांस दे देता हूं, उससे तुम्हारे परिवार खा करके सुखी होंगे। सात संगत जी कहते हैं, तराजू मंगाया गया, एक तरफ हंस को रखा, दूसरे तरफ राजा सिवी अपने हाथ से चाकू लेकर के अपने पट का मांस काट काट के डाल रहा है, अपने शरीर का मांस देते देते फिर भी जो पड़ा था हंस वाला वो भारी रहा, तो अंत में राजा सिवी खुद भी बैठ गया और कहता है, बहेलिया तुम मुझको खा लो। सात संगत, जिस वक्त राजा बैठा तराजू के ऊपर उसी वक्त जो है सो परमात्मा प्रकट हो। कहते हैं राजा सभी तो धन्य है, धन्य है, तू दया का सागर है। सत्संग जी कहने का भाव ये है कि जिसकी प्रीति परमात्मा के चरणों में है उसके हृदय में दया आ जाता है, संतोष, दया, क्षमा, शील, सत्य, ये सारे गुण आ जाते हैं उसके अंदर। प्रभु से प्रीति का भाव ये है, चित्त में प्रेम एक ही के साथ होता है, या तो वाहिगुरु के साथ होगा या संसार के साथ होगा। यदि संसार में मान का, बड़ाई का, पद का और बातों का खींच है मनुष्य के अंदर, समझ जो प्रभु के साथ प्रीति नहीं है, क्योंकि प्रीति तो एक के साथ होती है। यदि वाहिगुरु के चरणों में प्रीति है तो और तरफ जो है उसका लगाव खत्म हो जाता है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवान। यदि प्रभु के चरणों में प्रीति नहीं है तो अच्छे कुल वाले क्यों ना हो, अति सुंदर क्यों ना हो, चतुर क्यों ना हो, बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन समझो वो मरा हुआ है। पौड़ी गंगा ज्ञान गंगा खट शास्त्र हो ज्ञाता, पूरक कुंभक रेचक कर माता। गंगा खट शास्त्र हो ज्ञाता, सात संगत जी गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं, छह शास्त्र हैं और छह शास्त्र के छह उसके कर्ता हैं। पहला पूर्व मीमांसा है, पूर्व मीमांसा में कर्मों का वर्णन है कि कैसा कर्म करेगा इंसान उसका कैसे कैसे फल मिलेगा, पूर्व मीमांसा। और पूर्व मीमांसा के कर्ता हैं जैमिनी। दूसरा शास्त्र है योग दर्शन, योग दर्शन का कर्ता है पतंजलि। और तीसरा है न्याय शास्त्र, न्याय शास्त्र का है गौतम ऋषि है। और सांख्य शास्त्र का कर्ता जो है कपिल मुनि है, कपिल मुनि जो है वो सांख्य शास्त्र का कर्ता है। वैशेषिक शास्त्र का कर्ता कणाद मुनि है और वेदांत शास्त्र का कर्ता वेदव्यास जी। ये छह शास्त्र हैं और छह शास्त्र के उसके वो उन्होंने बनाया है। यहाँ पर गुरु महाराज कह रहे हैं गंगा खट शास्त्र हो ज्ञाता, खट का मतलब छह शास्त्र के ज्ञाता भी क्यों ना होवे, और पूरक कुंभक रेचक कर माता। सत्संग जी योगी लोग जब योग साधना करते हैं तो नाड़ियों के शोधन के लिए, क्योंकि जो भी हम कुछ खाते पीते हैं उससे शरीर के अंदर केमिकल पैदा होता है और वो केमिकल्स जो है खून में जा करके क्रोनिक बीमारियां पैदा करता है और मन को चंचल करता है। इसीलिए योगी लोग कुंभक रेचक पूरक, श्वास जो राइट साइड है से श्वास लेकर के श्वास के लेने को पूरक कहते हैं और श्वास के रोकने को कुंभक कहते हैं और लेफ्ट साइड से उसको छोड़ देने को रेचक कहते हैं। पूरक कुंभक रेचक, एक नाक के एक छेद से श्वास को लेना फिर श्वास को रोकना और दूसरे तरफ से छोड़ना, पूरक श्वास लेना, कुंभक श्वास को रोकना और रेचक श्वास को छोड़ना, ये योगी लोग ऐसा करते हैं। उससे नाड़ियों का शोधन होता है और नाड़ियों का शोधन होने से जो शरीर के अंदर केमिकल्स है वो बाहर निकल जाता है जिससे उसका मन जो है शांत होने लगता है। और भी विधियां हैं, यहाँ पर गुरु महाराज ने जो वर्णन किए हैं वो मैं बता रहा हूँ। पूरक कुंभक रेचक कर्माता, ऐसी क्रियाएं करता है, छह शास्त्रों का ज्ञाता है और पूरक कुंभक रेचक करता है, ज्ञान ध्यान तीर्थ स्नानी, और शास्त्रों का ज्ञान भी है उसको और ध्यान भी करता है और तीर्थों में भी जाता है स्नान करने के लिए। सोमपाक अपरस उद्यानी, सोमपाक उसको कहते हैं कि जैसे पूर्णमासी की रात हो, पूर्णमासी की रात को वो खुद अपने हाथों से स्नान करके भोजन बनाता है, उसको कहते हैं सोमपाक। सोम कहते हैं चंद्रमा को, सोमपाक अपरस उद्यानी, और जो व्यक्ति किसी से जल्दी छुआता नहीं है, हमेशा पवित्र अपने को समझता है, और उद्यानी का भाव ये है वो एकांत रहता है, उजाड़ में रहता है, लोगों से संपर्क नहीं रखता है, इतना सारा कुछ होवे राम नाम संग मन नहीं हेता, भावे वो छह शास्त्रों का ज्ञाता हो, पूरक कुंभक रेचक भी करता हो, ज्ञान भी है, ध्यान भी है, तीर्थों में स्नान भी करता है और सोमपाक भी करता है, अपरस है, उजाड़ में भी रहता है, लेकिन उसका राम के साथ, वाहेगुरु के साथ प्रीति नहीं है, राम नाम संग मन नहीं हेता, जो कछ कीनो सोउ अनेता, समझ जाओ कि उसने जो भी कुछ किया है वो अनित्य ही किया है, अनित्य का भाव ये है उसका कोई कीमत नहीं, सब नाश होने वाली चीजें किया है। गुरु महाराज ने जीवन का सार बता रहे हैं कि प्रभु के चरणों में प्रीति, साच कहो सुन ले हो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिसने प्रेम किया है उसी ने परमात्मा को पाया है। साध संगत जी, साहेब श्री हरगोविंद साहेब जी महाराज फरीदकोट फाजिलका के इलाके में गुरमत का प्रचार कर रहे थे, वहाँ पर भाई साधु थे रूपे खेती कर रहा था, गर्मी का मौसम था, पसीना पसीना था, वो प्यास लगा तो दरख्त के नीचे एक घड़ा था, उसमें पानी वो पीने के लिए गया, वो जैसे ही घड़े को लिया तो पानी बहुत ठंडा उसके जी में आया कि ये जो शीतल जल है, ठंडा पानी, यदि गुरु महाराज यहाँ होते तो मैं उनको छकाता। देखो कितनी प्रीति है गुरु महाराज से। साध संगत जी, उसने अभी संकल्प ही किया, गुरु महाराज घोड़े से एकदम आबिराजे, कहते हैं भाई रूपा, भाई साधु, कहाँ है जल मुझको छकाओ जो है, मैं बहुत प्यासा। इसीलिए कहते हैं साध संगत जी, गुरु हाजिर नाजिर है, हाजिर नाजिर है। जिसको विश्वास है, जिसको श्रद्धा है, जिसको प्रेम है, उसके लिए गुरु महाराज 24 घंटा हाजिर नाजिर है। जो समझता है एक ग्रंथ है उसके लिए तो फिर जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, उसको सब कुछ मिलता है। यहाँ पर गुरु महाराज हमें उपदेश कर रहे हैं, राम नाम संग मन नहीं हेता, जो कछ कीनो सो अनेता। यदि राम के साथ उसकी हित नहीं है, प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, तो जो कुछ भी करता है वो अनित्य है, नाश होने वाला है। वाते उत्तम गणो चंडाला, नानक जेहमन बसह गोपाला। कहते उससे तो अच्छा चंडाल है, नीच जाति का है, उसके हृदय में प्रभु का नाम तो है, नीच जात हर जप्त्या उत्तम पदवी पाए। और यहां तक कि भक्त रविदास जी ने, उन्होंने छिपाए नहीं कि मैं इस जाति का हूं, उन्होंने तो कहे कि मैं चमियार हूं, लेकिन अब चमियार नहीं रहा, हमने उस वाहे गुरु का सुमरण करके वही हो गया है। जैसे बूंद सागर में मिलकर सागर हो जाता है। भक्त रविदास जी कहते हैं अब उसमें और मुझ में कोई अंतर ही नहीं रहा, जब जल में जल आए कटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समान, एक मिक हो गया। तू तू करता तू भया, मुझ में रहा न हो आपा पर का मिट गया, जित देखा ते तो। साध संगत जी अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवंत। जीवन का सार है प्रीति। प्रीति देखना हो तो आप देखें भाई जेठा जी, जब साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज के चरणों में हैं, सारा सारा दिन सेवा कर रहा है, सारा दिन सेवा कर रहा है। लाहौर से जब उनके संबंधी लोग आए तो देखे के सिर के ऊपर टोकरी रख करके मिट्टी ढो रहा है, पसीना पसीना है। तो उनके रिलेटिव्स लोग कहते हैं तूने तो मेरा नाक ही कटवा दिया, कि तू कुणमा के घर तू जो है ये यही करना था, यही मिट्टी ढोना था, यही सब कुछ मजूरी करना था, तो वहाँ घर में कोई काम की कमी थी, यहाँ से ज़्यादा धन मिलना था, ज़्यादा इज्जत मिलना था तुमको, यहाँ तू ना रात देखता ना दिन देखता, सुबह देखता, सारा दिन जो है सो। वहाँ पर साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज सुन लिए, वो कहते हैं भाई ये मिट्टी दा टोकरा इसके सिर पर नहीं है, ये तो चवर तखत का मालिक है, ये तो जगत का भार इसके ऊपर है, आने वाला समय में जगत को कल्याण करने के लिए अभी से ये अभ्यास कर रहा है। साध संगत जी जो पूरा पूरा सिख बनता है ना, समा पा करके वही पूरा पूरा गुरु बनता है। जो सिख नहीं बना पूरा पूरा वो गुरु कैसे हो सकता है। इसलिए गुरु कहे सो कार कमावो, गुरु की करनी कहे धाओ। इसी तरह से भाई लहना जी को देखो, साहेब श्री गुरु अमरदास जी को देखो, यूं उम्र में 20 साल बड़े थे गुरु अमरदास जी, लेकिन साहेब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज की सेवा, रिलेशन में कुड़म है, लेकिन जब गए मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए गए तो सामने मंजी पर बैठाने लगे। वहाँ पर गुरु अमरदास जी महाराज चरणों में बैठ गए, रोने लग पड़े, कहते मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मैं कुड़माचारी करने नहीं आया, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप अपने चरणों में थोड़ी सी थां दे दो और साध संगत जी अपना मस्तक जो है गुरु अंगद देव जी महाराज के चरणों में रख दिए, अब आपकी मर्जी है। इसको प्रीति कहते हैं। जहाँ पर प्रीति होती है ना वहाँ अहंकार नहीं होता। मनुष्य आज पता नहीं किन किन बातों में फूँ फूँ करता फिरता है, लेकिन ये फूँक कब निकल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। मैं जब देखता हूँ लोगों को लगता है कि सारा जगत का मालिक ही हो, मेरे से ये होता है, मेरे से ये होता है, ये मैं करता है, मैं। और जो व्यक्ति धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं, एक चीजों का ठेकेदार हो तब तो। यहाँ पर भगवान कहते हैं सक्री देव प्रपन्नाय तवास्मीति चा याचते अभयम सर्वभूते भ्यो ददामी एतद व्रतम मम। भगवान कहते हैं मेरा व्रत है कि एक बार भी कोई कह दे कि मैं तेरा हूं तो फिर सारी जिम्मेवारी मैं ले लेता हूं उसका। उसने अनंत जन्मों में कितना पाप किया है मैं देखता ही नहीं। सक्री देव प्रपन्न है तवास्मीति च याचते, एक बार कहता है हे भगवान मैं आपका हूं, जैसे भाई जोगा बोला था ना तो किसके जोगा महाराज? आपके जोगा। तो गुरु महाराज किस प्रकार रक्षा किए? इसी तरह से कोई वाहेगुरु के चरणों में कह दे, हे वाहेगुरु, सगल द्वार के छाड़ के गहियो तुहारो तो मैं आपके द्वार में आ गया हूँ, छोड़ दिया हूँ सबको, सब कुछ देख लिया है। फिर परमात्मा उसको अपना लेते हैं। अभयम सर्वभूते भयो, उसको सारे प्राणियों से अभय कर देते हैं और उसको अपने जो है सो हृदय में बास देते हैं। जो व्यक्ति वाते उत्तम गणों चंडाला, नानक जेहमन बसे गोपाला, जिसके हृदय में वाहेगुरु का वास है, गोपाल का वास है, उसका लोक सुखे परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।